आहाना और अक्षय के सहगल निवास में आने के कुछ समय बाद घर का माहौल खुशनुमा हो गया था। बच्चों की वजह से घर में रौनक रहती थी और हर चेहरा खिला हुआ नजर आता था। तीनों बच्चे एक साथ खूब मस्ती करते, पढ़ाई करते, खेलते और खुश रहते थे, पर साथ ही उनकी शरारतें भी बढ़ गई थीं। अंतरा और अन्वय का नटखट, बेबाक, खुशगवार अंदाज, जो जिम्मेदारियों के बोझ तले दबकर कहीं खो गया था, अब सामने आने लगा था। अंतरा और आहाना ने मिलकर सारी जिम्मेदारियां संभालनी थीं, जिससे दोनों का काम आसान हो गया था। लोगों से साथ काम बढ़े थे, पर काम करने वाले हाथ भी बढ़े थे। कभी अन्वय बच्चों को छोड़ने जाता था तो कभी अक्षय लेने अंतरा जाती थी। यहां आकर भी अक्षय वो सब काम करता था जो पहले किया करता था। जितना हो पाता आहाना की मदद करता, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटता। अब तो वो रसोई के काम में भी उसकी मदद करने लगा था। हफ्ते में एक दिन जब अक्षय और अन्वय छुट्टी पर होते, आहाना और अंतरा को रसोई से छुट्टी मिल जाती थी। वे बच्चों के साथ खेलते, अपनी अपनी वाइफ और फैमिली के साथ वक्त भी बिताते थे। सब अच्छा चल रहा था, सभी खुश भी थे। आहाना इस घर में आ तो गई थी, पर इस घर में कदम रखते ही पुरानी दर्द भरी कड़वी यादें भी उसके जहन में ताज़ा हो गई थीं, जिन्हें वह भुलाने की कोशिश करती थी। अक्षय का प्यार, सबका साथ पाकर वह हर दर्द भुलाकर मुस्कुरा उठती थी। पर एक बार उसने रूपाली जी से मुंह फेरा तो दोबारा उनकी ओर कदम नहीं बढ़ाए थे। वे उसकी नज़रों में गिरने के साथ मन से भी उतर चुकी थीं, पर फॉर्मैलिटी वाला रिश्ता तो था ही। आहाना ने बीते दिनों में एक बार भी रूपाली जी के कमरे में कदम नहीं रखा था। हालांकि उनके खाने पीने का ख्याल रखती थी, नर्स से अपडेट लेती रहती थी, क्योंकि वे अक्षय से जुड़ी थी। अक्षय उनकी हेल्थ को लेकर परेशान रहता था, इसीलिए वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी कि कहीं कोई लापरवाही ना हो, खाने पीने से लेकर दवाई तक सही से मिले। अंतरा भी इस फॉर्मैलिटी के रिश्ते को निभा रही थी। नर्स थी उनका ख्याल रखने के लिए। उनकी हालत में अब पहले से कुछ सुधार था। फलक भी बीच बीच में आती जाती रहती थी। अंतरा की कल से तबीयत खराब थी, इसीलिए सारे काम की जिम्मेदारी आहाना पर आ गई थी, जिसमें राशि उसकी मदद करती थी। आज रूपाली जी की नर्स भी छुट्टी थी। संडे का दिन था, इसलिए अभिजीत जी आस पड़ोस के अपने दोस्तों के साथ बाहर टहलने गए थे। अक्षय और अन्वय नाश्ता करके अपने अपने काम पर जा चुके थे। आहाना ने तीनों बच्चों को नहलाकर तैयार करके नाश्ता करवाया और उन्हें राशि के साथ बाहर गार्डन में भेज दिया। अंतरा को खाना खिलाकर आराम करने को कहा था और अब उसे रूपाली जी को देखना था। हल्का गुनगुना पानी और साफ सूती कपड़ा लेकर उसने इतने दिनों में आज पहली बार उनके कमरे में कदम रखा। बिस्तर पर लेटी रूपाली जी ने आहट पाकर सर घुमाया। आहाना को वहां देखकर वे चौंक गईं। वहीं आहाना की नज़र उन पर पड़ी तो उसके आगे बढ़ते कदम पल भर को ठिठक गए। अगले ही पल वह भावहीन चेहरे के साथ उनकी ओर बढ़ रही थीं और गीले कपड़े से उनके हाथ पैर पोंछने लगीं। गुनगुने पानी से उनके शरीर को पोंछने के बाद उसने उनके कपड़े बदले और कमरे से बाहर निकल गई। कुछ ही मिनट बाद वह फिर से लौटी और अब की बार उनका सूप लेकर आई थी। उसने उन्हें सहारा देकर बिठाया, खुद से थोड़ा थोड़ा करके सूप पिलाया, दूध के साथ उनकी दवाई उन्हें खिलाई, फिर उनके मुंह को पोंछ दिया। निर्विकार भाव से वो अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी। आहाना का चेहरा अब भी भावहीन था, जबकि रूपाली जी, जो सारे वक्त उसे देखती रही थीं, उनके मन में बहुत कुछ चल रहा था। जिस तरह आहाना बिना किसी द्वेष के उनकी सेवा में लगी थी, उसने उन्हें आत्मग्लानी के गहरे समुद्र में ढकेल दिया था। उसके भावहीन चेहरे को देखते हुए वे मन ही मन बहुत कुछ सोचने लगीं। हमने जो तुम्हारे साथ किया, उसके बाद भी आज तुम यहाँ हमारी सेवा कर रही हो। तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो कभी पलटकर हमारी ओर देखती भी नहीं, मरते तो मरते ही छोड़ देती, और इसी काबिल थे हम। जैसा व्यवहार हमने तुम्हारे साथ किया, उसके बाद हम तुम्हारी तरस और दया के भी काबिल नहीं हैं। सही कहते थे तुम्हारे ससुर, भगवान ने हमें लाखों में नहीं करोड़ों में एक बहू दी थी, पर हम ही तुम्हारी कद्र नहीं कर सके। वे कहते थे कि बहुओं से बनाकर रखो, बुढ़ापे में जब शरीर काम नहीं करेगा तो वही काम आएंगी, पर हमने कभी उनकी कही बातों को अहमियत ही नहीं दी, एक कान से सुनकर दूसरे से निकालते रहे। और देखो, आज जब हम शरीर से लाचार हैं, हर काम के लिए दूसरों पर आश्रित हैं, तब तुम ही हमारी सेवा कर रही हो। अपने किए गुनाह उनकी आंखों के सामने घूमने लगे थे। आहाना के साथ किया अपना दुर्व्यवहार याद करते हुए उनकी आत्मा पर बोझ बढ़ता गया और मन आत्मग्लानी व पछतावे से भर गया। पश्चाताप के आंसू उनकी आंखों में छलक आए। हमें माफ कर दो बहू, आहाना जाने को पलटी थी जब रूपाली जी की आवाज उसके कानों से टकराई। उसके सपाट चेहरे के सर्द एक्सप्रेशन कुछ बदले, आगे बढ़ते कदम ठिठक गए और वहीं खड़ी वे उनकी बात सुनने लगी। माफ कर दो हमें, बहुत गलत किया हमने तुम्हारे साथ। अपने अहंकार और सत्ता की लालसा में अंधे होकर तुम पर बहुत अत्याचार किए हमने। इस घर की बहू और अक्षय की पत्नी के रूप में तुम हमारी पसंद नहीं थी, पर हम तुम में कोई कमी निकालकर रिश्ते को ठुकरा नहीं सके और मजबूरी में तुम्हें इस घर की बहू बनाकर ले आए, लेकिन कभी बहू के रूप में अपना नहीं सके। हमेशा तुम में कमी ढूंढते रहे, तुम्हें सबकी नजरों में गिराकर खुद को सही साबित करने की कोशिश करते रहे, तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलें खड़ी करते रहे, तुम्हें कड़वी बातें सुनाकर अपने अहम को संतुष्ट करते रहे। सबने जितनी तुम्हारी अच्छाई दिखाई, हम तुमसे उतनी ज्यादा नफरत करते गए। कहीं तुम हमारे परिवार को अपने काबू में ना कर लो, हमसे अपना राजपाट ना छीन लो, हमारे बेटे को अपने काबू में ना कर लो। इस डर से हमेशा तुम्हें अपने नीचे दबाने की कोशिश करते रहे। सही कहता है अक्षत, हम कभी आपको समझ ही नहीं सके। भगवान ने लक्ष्मी जैसी बहू दी हमें, पर हम उसकी बेकदरी करते रहे। अपने हाथों हमने अपना घर उजाड़ लिया, आज पूरे परिवार के बीच होकर भी हम अकेले हैं। हमारे पति हमारी ओर देखना भी पसंद नहीं करते, हमारे बच्चे हमसे बात करके बस औपचारिकता निभाते हैं, हमारा ध्यान रखकर बेटे बेटी होने का फर्ज निभाते हैं। उनके व्यवहार में ना अपनत्व है, ना प्यार, और ना उनके मन में हमारी कोई इज्जत। आपको सबकी नजरों में गिराते गिराते आज हम खुद अपने ही परिवार की नजरों में इतना गिर गए कि उनसे नजरें नहीं मिला पाते। आपको अक्षय से दूर करने की कोशिश करते करते हमने अपने हाथों अपने परिवार को खुद से दूर कर लिया। जिन पोते पोती की चाहत में हमने आपको हजारों बातें सुनाई, आज वही पोते पोती हमारे पास बैठना भी पसंद नहीं करते। ये हमारे गुनाहों की सजा है, इसलिए हम शिकायत नहीं कर रहे। जब तक जिंदा हैं, इस सजा को भुगतेंगे, जो बोया है वो काटेंगे भी। शायद इससे हमारे पाप कुछ कम हो जाए, पर जब तक तुमसे माफी नहीं मांग लेते, हमारे मन पर रखा बोझ हल्का नहीं होगा, हमारा जमीर हमें धिक्कारता रहेगा। आपने हमें सवाल किया था ना कि आपकी क्या गलती थी? आपकी कोई गलती नहीं थी, हम गलत थे, हमेशा हम गलत थे, और खुद को सही दिखाने के लिए हर बार सारा दोष आप पर डालकर अपने अहम को संतुष्ट करते रहे। हम आप जैसी नेक दिल और सीधी साधी बहू के काबिल नहीं थे। सारी गलती हमारी थी और सजा हम तुम्हें देते रहे। बहुत अत्याचार किए हमने आप पर, हमारे कारण आपने अपना बच्चा खोया, और तब भी हमने आपको ही दोषी ठहराया। आपका दर्द समझने की जगह आपके जख्मों पर नमक छिड़कते रहे। गुनाह किया है हमने, पाप किया है, जिसकी कोई माफी नहीं, फिर भी आपसे आज हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। अपने किए कर्मों की सजा तो हम भुगत ही रहे हैं और आगे भी भुगतेंगे, पर आप अपने मन पर कोई बोझ मत रखिएगा। आपकी कोई गलती नहीं थी, हम हैं आपके कसूरवार, सारा दोष हमारा है, हम दोषी हैं आपके। हम पर दया मत दिखाइएगा और हमें कभी माफ मत कीजिएगा, हम आपकी दया और माफी के काबिल नहीं हैं। रूपाली जी की बातें सुनकर आहाना का दिल भर आया। वह 5 साल जो उसने इस घर में बिताया, उसकी आंखों के आगे किसी चलचित्र की भांति घूमने लगा।
रूपाली ने उसके साथ जो जो किया, सब एक एक कर उसे याद आने लगा। उनकी कड़वी बातें, ताने सब आहाना के कानों में गूंजने लगे। वो हर दर्द उसने एक बार फिर जी लिया जो उसे रूपाली जी ने दिया था। अपने बच्चे को याद करते हुए उसकी आंखें छलक गईं। कितना मुश्किल वक्त देखा था उसने, कितना कुछ सहा था उसने। इंसान कुछ भूलता नहीं है, बस वक्त और हालातों के आगे मजबूर होकर उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाता है। वो भी कुछ नहीं भूली थी, बस अक्षय के साथ और प्यार के सहारे अपनी जिंदगी के उस बुरे दौर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गई थी। पर आज एक बार फिर उसे वो सब याद आ गया था, जिसे वो भुलाने की लाख कोशिशों के बाद भी आज तक भूल नहीं पाई थी। ना वो ये सब कभी भूल सकती थी और ना ही उन्हें माफ कर सकती थी। आहाना उनकी ओर पलट गई। उसने अपनी आंखों के सामने उन्हें संघर्ष करते देखा। बहुत मुश्किल से रूपाली जी ने उसके आगे हाथ जोड़े थे। उनके चेहरे पर दर्द के भाव मौजूद थे और आंखों में पश्चाताप के आंसू भरे थे। आहाना पल भर सूनी वीरान निगाहों से उन्हें देखती रही, फिर बिना किसी भाव के सपाट लहजे में बोली, मत मांगिए हमसे माफी, हम आपको माफ नहीं कर सकेंगे।